मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अरुणा कुमारी, आपका गांव है शोकहारा जिला बेगूसराय बिहार से। रामकिशन, आपका गांव है लाडेरा जिला बीकानेर राजस्थान से। और प्रियंका कुमारी, आपका गांव है रणजीतपुर जिला सीतामढ़ी बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं जिस विषय पर कल आप सबसे बातें कर रहा था कि किस तरह से अपनी ही सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैंने कल आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, उसे ही मैं आज आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन कुछ दूसरी इम्पॉर्टेंट खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि आज कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेंगी। देखिए, एक खबर थी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का तृतीय चरण शुरू होने वाला है। मैं यहां आपको इससे पहले के बारे में बताऊं, एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं, सच पूछे तो इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, मंत्रिमंडल ने इसे अपनी स्वीकृति दी है। आप सबसे मैं इससे पहले बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि जो मंत्रिमंडल है, जिसकी अध्यक्षता जनरली प्रधानमंत्री ही करते हैं अगर वो यहां हैं तो, ये सही मायने में सरकार होती है। सारे निर्णय ये कैबिनेट ही लेती है। लेकिन देखिए, कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो वो है कि वो सीधे सीधे निर्णय लेकर के उन्हें लागू कर सकती है, लेकिन सारी चीजों के बारे में ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एक्ट बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कानून बनाने का जो काम है वो कैबिनेट का नहीं है, वो संसद का है। तो फिर यहां कैबिनेट क्यों है? कैबिनेट इसलिए है कि अगर सरकार चाहती है कि इस पर कानून बने, तो सीधी सी बात है कि फिर कैबिनेट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और जब कैबिनेट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब एक सरकार चाह रही कि ऐसा कानून बने, फिर वो संसद में जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, और वहां से पारित होने के बाद ही एक्ट बन पाएगा। यदि वहां से पारित नहीं हो पाया तो कैबिनेट ने भले ही उसे स्वीकृति दे दी हो, लेकिन उसको कुछ उसमें कुछ होगा नहीं। तो ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कैबिनेट सीधे सीधे अपनी स्वीकृति से लागू कर सकता है। तो अब मैं कैबिनेट और खासकर संसद के इस अंतर को स्पष्ट करने के बाद जो कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं, जो स्वीकृतियां दी हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे सीधे नहीं, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण विकास और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके तीसरे चरण की शुरुआत होगी, इसको स्वीकृति दे दी है कैबिनेट ने, जिसमें 125,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। बहुत बड़ी योजना है, 125,000 किलोमीटर। और इस तृतीय चरण की विशेषता यह है कि जो हमारे गांव हैं उनको अब ऐसे क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जबकि शुरुआत के चरण में उनको जोड़ा गया था नगरों से। ये शुरुआत हुई थी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 25 दिसंबर 2000 से। याद रखिए कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे और उनके समय में योजना शुरू हुई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही है और इसके बहुत महत्वपूर्ण लाभ दिखाई दिए हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो पहले जो व्यवस्था की गई थी कि जो 500 से अधिक की आबादी वाले जो गांव होंगे उनको नगरों से जोड़ा जाएगा, वहां से शुरुआत हुई। अब तृतीय चरण में कहा गया है कि जो हमारी आबादी वाले जो एरियाज हैं उनको एक तो ग्रामीण बाजारों से जोड़ा जाएगा, कि ग्रामीण लोगों को जिस तरह से बाजार की जरूरत होती है, हाट बाजार की, अपना सामान बेचने के लिए। दूसरा यह कि इस तरह से जोड़ा जाएगा कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो सके, और इस तरह से जोड़ा जाएगा कि उन्हें हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके, यानी अस्पताल वगैरह आने जाने में उन्हें आसानी हो। तो मतलब ये तीन मेन कंपोनेंट रखे गए हैं, उनसे हमारे गांव को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी। तो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है दोस्तों, एक कानून है, पास्को कानून। पास्को, ये पास्को के नाम से ही फेमस है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है आप अगर जान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पी का मतलब है प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण। किसका? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। यहां जो बच्चे हैं उसका मतलब है 18 वर्ष या उससे कम। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यदि यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उसके लिए अभी तक जो दंड के विधान थे उसमें उम्र कैद तक की बात थी, आर्थिक दंड और उम्र कैद। अब फिर अलग अलग तरह के अपराधों के लिए अलग अलग वर्ष के लिए कैद की सजा थी, उसके लिए अब मृत्यु दंड की भी व्यवस्था की जाएगी। ये कैबिनेट ने कहा है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मृत्यु दंड तक का विधान किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये पास्को एक्ट है तो देखिए सीधी सी बात है कि चूंकि ये एक्ट के तहत लागू होगा तो अब इसे संशोधन में लाया जाएगा, यानी कि ये पार्लियामेंट के पास जाएगा। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट ने कही है वो है कि हमारे 13 जो श्रम कानून हैं उनको इकट्ठा करके एक संहिता बनाया जाएगा। आप लगातार पढ़ते हैं कि श्रम कानूनों में सुधार की बात कही जा रही है, बहुत ज्यादा सरकार पर प्रेशर है कि वो श्रम कानूनों में सुधार करे, लेकिन अभी इसकी डिटेल्स आ जाए, यहां सुधार जैसी कोई विशेष बात दिखाई नहीं दे रही है। हमारे पास अभी बहुत सारे श्रम कानून है तो उसमें यह है कि वो 13 को मिला करके एक संहिता का रूप दे देंगे। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण डिसीजन है फ्रेंड्स कि जो ट्रांसजेंडर जिन्हें हम किन्नर कहते हैं उनके सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार के लिए भी कानून बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है इस परिवर्तन के लिए। सच पूछिए तो आप सरकार को धन्यवाद भी दे सकते हैं और ये भारतीय समाज धीरे धीरे किस तरह से खुल रहा है उसका भी एक प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कल हम लोग जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकार पर बात कर रहे थे कि क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो अपनी ही सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और कल मैंने रूढ़ी प्रताप और हेमा मालिनी जी के माध्यम से बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उससे संबंधित दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल कमेंट था वो भी आपको प्रोवाइड किया था, वो जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अगर आप परिभाषित करें तो ठीक है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आकर के अपनी बात संसद में रखते हैं या विधानसभाओं में रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र है वह डिबेट को महत्व देता है ना, बातचीत को महत्व देता है, बहस को महत्व देता है, अभिव्यक्ति को महत्व देता है और इसीलिए विपक्ष की इतनी बड़ी भूमिका लोकतंत्र में स्वीकार भी की जाती है कि वो सरकार की आलोचना कर सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। तो विपक्ष लोकतंत्र की आप यूं कह लीजिए कि एक जान हुआ करता है। अगर विपक्ष नहीं है तो मान करके चलिए कि लोकतंत्र भी नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी सरकार में ही है, सरकार बनी हुई है किसी पार्टी की, तो क्या उसका सदस्य अपने सरकार की आलोचना कर सकता है? दोस्तों इसके लिए सच पूछे तो हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि नहीं आप आलोचना कर सकते हैं या आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की सच्ची आत्मा की बात करें तो कहा जाना चाहिए कि उन्हें आलोचना करने का अधिकार हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हमारे यहां कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं जो जन प्रतिनिधियों के इस तरह से स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, व्हीप जारी करना। अगर पार्टी ने व्हीप जारी कर दिया है तो उस पार्टी के जो सदस्य हैं जो संसद में या विधानसभा में उपस्थित हैं उन्हें उसी के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा जो पार्टी ने आदेश दिया है, दूसरे में नहीं डाल सकते। भले ही आप उसके विपक्ष में हैं, उसकी बहुत आलोचना करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप मतदान करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहां आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो गई है। दूसरा है मित्रों, जब एक बार आप एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में आप लेजिस्लेचर में पहुंच जाते हैं, विधायिका में पहुंच जाते हैं, किसी वजह से आपको लगता है कि नहीं नहीं ये राजनीतिक दल ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है या ये जो जिस तरह से वायदा करके जनता से आई थी उसके साथ धोखा कर रही है, मैं इस पार्टी में नहीं रहना चाहता, तो फिर से हमारे यहां दल बदल कानून है जो ये कहता है कि नहीं, अगर आप पार्टी के साथ बदलना चाहते हैं तो 2/3 कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज आपको सदस्यता अपनी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि पार्टी से अलग होना आसान नहीं है, यानी कि दूसरी पार्टी में शामिल होना आसान नहीं है, उसके लिए 66% सदस्यों को एक साथ पार्टी छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है कि दल बदल करना उतना आसान नहीं रह गया। और अभी आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में और गोवा में इस तरह की कितनी स्थितियां चल रही हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दल बदल कानून है, यह भी कहीं न कहीं जो जन प्रतिनिधि हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है। वो खुल करके बात नहीं कर सकते, खुल अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। कल के एडिटोरियल कमेंट में आपने ये बात पढ़ी कि कैसे नेहरू जी के समय तक ये चीजें बड़ी खुलेआम होती थी और नेहरू जी की अपनी ही पार्टी के सदस्य बड़ी खुलेआम नेहरू जी की नीतियों का संसद में आलोचना किया करते थे और नेहरू जी उन्हें स्वीकार भी करते थे। लेकिन धीरे 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 ये चीजें अब खत्म होती चली जा रही हैं और जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि नहीं, वो सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। खासकर मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्रियों के बारे में जरूर है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के सदस्य चूंकि सरकार के ही हिस्से होते हैं, मतलब उस रूप में जो एक्टिव, जो एक्सिक्यूटिव है उसके हिस्से हो जाते हैं, तो उनसे जरूर अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। और अगर सरकार की नीतियों की उन्हें आलोचना करनी है तो जो बैठकें होती हैं आंतरिक रूप से या कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और फिर कैबिनेट उसके आधार पर निर्णय लेती है। तो दोस्तों, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और ये बेसिकली पॉलिटी का हिस्सा है और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस में पूछ भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रवि वर्मा, शैलेंद्र यादव, के बी मीना, नवीन राजपुरोहित, राहुल सिंह, अंकित कुमार सचान, सावन मिश्रा, दिनेश, इतिहास साहिल कश्मीर से और समर राय। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।